Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare पावन श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल हे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक जो है क्या है, कौन सा है? हरिओम। कौन सा श्लोक है? आठवें अध्याय का छठा श्लोक। क्या है श्लोक? बोलिए, पीछे पीछे दोहराइए। जिन लोगों के पास भगवत गीता है वो लोग दोहराएंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्याजन्ते अंतकलेवरम ताम तामेव तिकौन्ते सदा तद्भाव भावितम्। यम यम वापि स्मरण भावम् त्याजन्ते अंतकलेवरम् ताम तामेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। यम यम वापि स्मरण भावम् त्याजन्ते अंतकलेवरम् ताम तामेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। बोलिए, आप में से कौन बोलेंगे?
यम यम वापि स्मरण भावम्
यम यम वापि स्मरण भावम्
त्याजन्ते अंतकलेवरम्
त्याजन्ते अंतकलेवरम्
तम तमेव इति कौन्तेय
तम तमेव इति कौन्तेय
सदा
तद्भाव भावितम्। और माता लोग, माता जी, No problem. तो इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे, आप पीछे दोहरा सकते हैं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय
मनुष्य
जिस जिस भाव का
स्मरण करता है
वह
उस
भाव को
निश्चित रूप से
प्राप्त होता है। तो हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। बोलिए नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत सास्वते नामिने नमस्ते सास्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में क्या बताया गया कि अंतकाल में व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है अपना शरीर त्यागते समय उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंत समय में हम जिस भी भाव का चिंतन करते हैं अपने शरीर का त्याग करेंगे अगला शरीर हमको उसी का मिलेगा। अगर आप स्त्री का चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग करेंगे तो अगला शरीर, स्त्री अगर पुरुष का चिंतन करते हुए अपना शरीर त्याग करेंगे तो अगर कोई कुत्ते का शरीर का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करेगा तो अभी आप बोलेंगे कि फिर पुण्य कर्म कहां कार्य करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे पुण्य कहां काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति पुण्य तो करेगा, अपने शरीर से पुण्य तो करेगा, पानी की बाल्टी देगा मंदिर में ले जाकर, घड़ा देगा मिट्टी का, चावल देगा, दान देगा, स्कूल में बच्चों को खाना खिलाएगा, पुण्य कर्म करेगा, लेकिन चिंतन किसका करेगा? अपने टॉमी का। हर टाइम क्या बोलेगा? सुबह उठकर टॉमी 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 टॉमी। तो फिर क्या होगा अगर उसका शरीर गलती से उसने छोड़ टॉमी का शरीर? अब बोलेंगे पुण्य कर्म का क्यों जी? तो पुण्य कर्म का ये कि वो होंडा सिटी में घूमने वाला टॉमी बनेगा। हरि बोल। पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ ना, उसको लग्जरीज मिल रही है लाइफ की। और कोई व्यक्ति अगर भगवान के नामों का चिंतन करता है, क्या बोलता है? कृष्ण 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 कृष्ण, तो उसको क्या प्राप्त होगा? भगवान प्राप्त होगा। अभी मालूम थोड़ी अंतकाल में क्या होने वाला है हमारे साथ में, मालूम है कल क्या होगा? किसको पता? अभी जिंदगी का ले लो मैं साथ, यही है कल क्या होगा अभी जिंदगी का, इसी यही तो करते हैं हम लोग। ले रहे हैं कि नहीं मजा? आ रहा है? नहीं आ रहा है। मजा कहाँ आता है जी? ये देखो माइक को भी नहीं आ रहा है। कैसे रुकेगा? तो नहीं होगा, नहीं है उसमें, है नहीं कुछ भी।
अच्छा ये नहीं, हाँ
ठीक है, नहीं चला लेंगे, ऐसे भी पकड़ के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ऐसे ठीक है। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आएगी? ठीक है। हरे कृष्ण। कहाँ मजा है? बिल्कुल नहीं है लाइफ में, कितना दुख है। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण। तो व्यक्ति को मजा कहाँ मिलता है संसार के अंदर? मजा है, कहाँ है मजा? मजे का सजा मिलता है ना, जितना मजा उतनी सजा। तो कहां व्यक्ति को आराम से शांति प्राप्त है संसार में? नहीं हो पाती है। इसीलिए बेहतर है कि हम इस संसार में रहते हुए कृष्ण के नामों का चिंतन करें। जैसे कई लोग तो ऐसे हैं कि इवन कुत्ते का नाम भी कृष्ण का नाम रख लेते हैं, मालूम है आपको। एक व्यक्ति थे एम्स्टरडम में रहते थे, उन्होंने पति पत्नी थे, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रखा था कृष्णमूर्ति, क्योंकि इंडिया में एक पॉलिटिशियन थे कृष्णमूर्ति के नाम से, तो उन्होंने अपने टॉमी का नाम रखा था कुत्ते का कृष्णमूर्ति। तो एक बार कृष्णमूर्ति गुम हो गया, तो अमेरिका में तो पत्नियां जो होती हैं वो हिंदुस्तान की पत्नियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, और हिंदुस्तान की तो होती ही है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन अमेरिका में उससे भी ज़्यादा है। क्यों? उनके पास पिस्टल रहता है और वो बोलती हैं ज़्यादा बोले तो उड़ा डालूंगी, ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर लोग डर के रहते हैं। तो एम्स्टरडम में जब कुत्ता गुम हो गया तो रात को बोली 10 बजे जाओ, कहाँ जाओ, सड़क पे जाओ और मेरा कृष्ण मूर्ति को ढूंढ के लाओ, और याद रखना उसको कृष्ण मूर्ति मत बोलना। अरे कृष्ण मूर्ति नाम है तो कृष्ण मूर्ति नहीं बोलू? नहीं, उसको प्यार के नाम से पुकारना। मैं उसको प्यार से क्या बोलती हूँ? कृष्ण। क्या बोलती हूँ? तो अभी वो व्यक्ति निकल पड़े रस्ते में, कहाँ, एम्स्टरडम की सड़कों पे, और क्या बोल रहे थे? कृष्णा कहाँ हो, कृष्णा कहाँ हो। और यहाँ पर कुछ भक्त जो कि इस्कॉन मंदिर केंद्र में प्रभुपाद जी के द्वारा भेजे गए, वहां पर वो लोग कीर्तन कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, और बुक्स बांट रहे थे, जैसे प्रभु जी बांटते हैं, हमारे प्रभु जी बांटते हैं, ले लीजिए कृष्ण को, ले लीजिए कृष्ण को, ले लीजिए कृष्ण को, ले लीजिए। और ये पूछ रहा है कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, और दोनों का संबंध हो गया, मिल गए रास्ते में। जब संबंध हुआ रास्ते में मिले, तो ये भक्त बोले अरे एम्स्टरडम की इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोगों के इस रात्रि में ये व्यक्ति कितना पवित्र है, देखो कृष्ण को ढूंढ रहा है। गौरंग महाप्रभु जिस प्रकार से रात्रि में कृष्ण को ढूंढते थे, ये भी ढूंढ रहा है कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। तो बोले आइए आइए कृष्ण हमारे पास, हम देंगे आपको कृष्ण। तो बड़ा खुश हो गया, अच्छा आपके पास कृष्ण, चलो पत्नी अब मेरी मारेगी नहीं गोली मेरे को, चलो चलो। तो ले गए उसको साथ में मंदिर अपने, बोले कि दिखाओ कृष्ण कहाँ है, बोले अभी बंद कर रखा है, अभी वो खाना खा के सो रहे हैं। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, आप लोग तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इतना ख्याल रखते हैं कृष्ण का, बहुत अच्छा। वो पर्दा डाल रखा है, बोले अच्छा इधर है, ठीक है सोने दो, कब उठेगा? अरे सुबह 4 बजे उठता है। अच्छा ठीक है ठीक है, तो बोले तभी दे दीजिएगा, हाँ तब दे देंगे आपको, ठीक है दिखाइएगा, दिखाएंगे आपको। तो सुबह सुबह 4:30 बजे अल्टर खुला मंगला आरती के लिए, संसार दावा तो बोला ये कृष्ण कहाँ, कृष्ण ए जो काम नहीं करे, अरे ये तो मूर्ति है। बोले हाँ यही तो कृष्ण है। अरे नहीं नहीं मैं इस कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो मेरा टॉमी इतना छोटा सा है, अपना ब्रीड बताया, इस ब्रीड का है डॉग, उसका नाम है कृष्ण, पूरा नाम कृष्ण मूर्ति है और वो कृष्ण है। बोले ओ अच्छा अच्छा, तो आप उस कृष्ण की बात कर रहे थे? हाँ हम तो उस कृष्ण की बात कर रहे थे, लेकिन अज्ञानता में भी कृष्ण नाम बोलने से उसको इतनी सुकृति प्राप्त हुई। क्या उसको प्राप्त हुआ? भक्तों का संग प्राप्त हुआ, भगवान की मंगला आरती में जाने का मौका मिला। आप देखिए हम लोग तो पूरा 16 माला जप करते फिर भी मंगला आरती जाने में दिक्कत है, तो उस व्यक्ति को कितनी सुकृति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने उसके बाद कोई अपराध या पाप नहीं किया। और फिर भक्तों ने बोला कि आप अब आए हैं तो इस कृष्ण तो आपको ये वाले तो चाहिए नहीं, तो कोई बात नहीं कम से कम कुछ गिफ्ट ही ले जाइए भगवत गीता हमारी तरफ से। तो बोले ठीक है इसको पढ़िएगा, और व्यक्ति ने घर जाकर उसको पढ़ना शुरू किया। नहीं जब वो मंदिर से बाहर निकले तो क्या देखा कि वहां पर कृष्ण मूर्ति जो है घूम रहा था मंदिर के प्रांगण, तो उठा लिया, बोला वो दो कृष्ण मूर्ति मिल गया। तो बोला थैंक यू, यू पीपल आर लकी, आप लोग लकी हैं, आपके कारण मुझे ये मिल गया। और पत्नी को ले जाके दिया, बोला वहां मंदिर में मिला था, उन्होंने ये गिफ्ट दिया, कह रहे ठीक है ये तुम रख लो, ये कुत्ता मेरा मेरे को दे दो। तो कुत्ता उसने ले लिया औरत ने, और पति के पास रह गया भगवत गीता। अब भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते उसको इतना आनंद आया कि कुछ ही महीनों बाद वो कहाँ आ गया, इस्कॉन केंद्र में आया, और बोला क्या मुझे फुल टाइम डिवोटी बना दो। तो उसने अपना गृहस्थ जीवन को भक्तमय जीवन बना लिया। तो इस तरह से भी भक्त बन जाते हैं जीवन में, जब कोई व्यक्ति क्या करता है कृष्ण के नामों का अनजाने में भी उच्चारण करता है ना। तो अगर आपको यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाना हो गोविंदपुरी, और कोई व्यक्ति गोविंद बोले तो आपको नाभावास भी हो जाएगा ना, उसका सब रंच मात्र भी प्राप्त हो गया, तो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। इसलिए सबसे जब भी मिले किसी भी व्यक्ति से तो क्या बोलना चाहिए, बोलते हैं सबसे पक्का लॉक किए जाए, 1 करोड़ का प्रश्न है। हाँ यही तो दिक्कत है, बाकी लोगों से क्या बोलते हैं, हेलो, हेल का मतलब नरक, नरक लो सुबह सुबह ही, हम भी नरक में तुम भी नरक लो, मजे लो नरक लो, हेलो सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, हेलो हेलो। और ज्यादा से ज्यादा और ऊपर उड़ जाएंगे तो क्या बोलते हैं, ज्यादा एडवांस हो गए तो हाय 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 या फिर हाय हाय, दो ही प्रकार से हाय होता है संसार में। तो हमें उस हाय को छोड़ना है, हेलो को भी छोड़ना है, तो क्या बोलते हैं, हेलो हाय छोड़िए हरे कृष्णा बोलिए। किसी भी व्यक्ति को अनजाने में भी आप हरे कृष्णा बोलें और व्यक्ति को हरे कृष्णा बुलवाएं तो उसको क्या होगा, आपको भगवान की कृपा मिलेगी और उसको भी मिलेगी। अनजाने में कहीं उसको स्वीकृति प्राप्त हुई तो वो भक्त बन जाएगा। तो प्रयास करिए जिससे भी मिले उस व्यक्ति को क्या बोले, हरे कृष्णा। इवन आई फॉलो, मैं क्या फॉलो करता हूँ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति भी आता है ना तो लई लोग प्रश्न पूछते हैं कि गरीबों को दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो ज्यादातर लोग मना करते हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते थे किसी भी गरीब को दान नहीं देना चाहिए। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोलते थे, ये तो गलत बात है, हम तो देते हैं। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे कि जो गरीब व्यक्ति है बैगर, तो भक्त पूछते थे प्रभुपाद ये बैगर क्यों बना, तो प्रभुपाद जी बताते हैं क्या, अपने पिछले जन्म में इसने क्या किया, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्री विल, अपनी आजादी का दुरुपयोग किया। और जो व्यक्ति अपनी आजादी का दुरुपयोग करता है उसको कैसा शरीर प्राप्त होता है, भिखारी जैसा। मनुष्य तो बना लेकिन कौन सा मनुष्य बना, रेड लाइट पर खड़ा हुआ क्या कह रहा है, अरे दे दे माई अम्मा, दे दे कुछ, दे दे भाई, ऐसे बोलता है। तो ऐसा शरीर प्राप्त हुआ, अगर आपने उसको दिया तो आपने उसको दोबारा से उस शरीर को पाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपने उसकी सपोर्ट करी। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने किसी को 10 रुपए दिए और व्यक्ति जाकर शराब पिए तो क्या किए आप, उसको शराबी बनने में उसकी मदद किए। तो भगवान को शराबी पसंद है, नहीं पसंद है, तो भगवान आपको भी पसंद करना बंद कर देंगे और उसकी सुकृति मिलाप्त होने की बजाय भक्ति की आपको उसके दुष्कर्मों का फल भी मिलना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि अपने पास हमेशा प्रसाद रखें और जो भी व्यक्ति आपसे मिलने आए या जो भी आपसे मांगने आए उस व्यक्ति को प्रसाद दे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर व्यक्ति को प्रसाद देना चाहिए। आप कहेंगे इतना प्रसाद कहाँ से लाए प्रभु जी, लड्डू के लड्डू बिक जाएंगे हमारे तो, डब्बे किलो के किलो चले जाएंगे। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, अपने घर में बनाया हुआ हलवा कुछ भी दे सकते हैं, थोड़ा पूड़ी सब्जी रोटी जो भी दें, गरीब को देना चाहिए, है ना। लेकिन अगर वो व्यक्ति जेन्युइन है और उसको सच में धन की आवश्यकता है और आप जानते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन सही होने वाला है तो देने में भी कोई तकलीफ नहीं है, आप उसे दे सकते हैं। लेकिन क्या बोलिए, बोलो हरे कृष्णा, तो उससे बोलो कि बोलो हरे कृष्णा पूरा मंत्र। तो जब मैं जाता हूँ रस्ते में, कई जगह एक सेंटर से दूसरी जगह प्रीचिंग कर रहे हैं, जैसे आज सुबह भी फरीदाबाद में भागवतम क्लास थी, फिर मैं मिड डे में लिया वहाँ भी क्लास थी, फिर एक के घर गए काउंसलिंग करने, फिर अभी यहाँ पर आ गए, तो इस तरह से आज 4 जगह लेक्चर रहे। तो बीच में कई गरीब लोग मिलते हैं, तो मिलते हैं तो वो बोलते हैं कुछ दीजिए, कुछ भी प्रसाद है दे दिया, उनको फ्रूट्स दे दिए, नहीं है तो दे दीजिए हमें कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो उनको हम कुछ 5 रुपए 10 रुपए जो भी है अवेलेबल दिया दिया, तो साथ में बोलते हैं पूरा महामंत्र बुलवाते हैं, बोलो महामंत्र तब पैसे देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे देकर भक्त बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसके शरीर की आवश्यकता के लिए 10 रुपए दे रहे हैं पर उसकी आत्मा की आवश्यकता के लिए उसको हरे कृष्ण दे रहे हैं। तो हमें हरे कृष्ण देना इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि हम उसको क्या दें, उसके धन को आवश्यक, उसके शरीर की पूर्ति के लिए दें। मान लीजिए एक व्यक्ति थे, उनके बेटे कहाँ चले गए, विदेश चले गए, और जाकर विदेश में शादी कर लिए और एक सुंदर सी लड़की भी रख ली है और उसके साथ में एक बच्चा भी हो गया, और फिर क्या किया, अपने माँ बाप को भूल गए, माँ बाप ने तो उनको इंजीनियर बनाने में सारा धन लगा दिया, कोई पैसा नहीं है उनके पास में। तो उन्होंने अपने जो पुराने मित्र थे उनको बोला कि भाई आपके बच्चे हमारे बच्चे साथ पढ़ते थे, आपके बच्चे तो आपको भूले नहीं लेकिन हमारे बच्चे तो हमको भूल गए, आज देखिए ऐसी स्थिति है कि आप तो रिटायर हो गए, अपना घर चलाने तक के लिए धन नहीं है तो हम क्या करें। तोड़ने का कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों से बोलेंगे, वो तो आपके बेटे के मित्र हैं, वो समझाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों को बोला, तो उनके 4 मित्र आ गए आए मदद करने के लिए। तो पहला मित्र बोला कि देखिए माताजी प्रभु जी आप चिंता मत करिए, हम क्या करेंगे आपको हर महीने के लिए कुछ धन प्रदान करेंगे, जो भी मेरी सैलरी आएगी उसका 10% मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा। तो बोले वो थैंक यू सो मच। सेकेंड बोला मैं क्या करूंगा, मैं आपको हर महीने आपकी जो ग्रोसरी होती है, जो आपका चावल दाल चीनी जो है राशन, वो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। तो बोले थैंक यू। तीसरा बोला मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको आपके वस्त्र प्रदान करूंगा हर महीने की जरूरत की, जो भी कपड़ा फट गया सिलाई का जो भी खर्चा है वो मैं करूंगा। तो चौथा मित्र जो बोला कि मुझे कुछ परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा, वो तुरंत अमेरिका का फ्लाइट पकड़कर अमेरिका चला गया और जाकर अपने लंगोटिया यार के कान पकड़े, बोला तुझे शर्म नहीं आती है अपने माँ बाप को भूल गया है, चल वापस, और उनके माताजी पिताजी के पास लेके आ गया और उनकी पत्नी बच्चों को भी ले आया। साथ में। तो अब सोचिए जब उसका पुत्र वापस आया तो उसने कहा, अरे बेटा तुम मुझे भूल गए थे। बोला, नहीं पिताजी मैं भूला नहीं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे समझाया तो मैं वापस आ गया। चलो ठीक है, आए तो गले लगाया, खुश हो गए। तो अब बताइए जो माता जी पिताजी थे उनके, उन चार मित्रों में से सबसे ज्यादा प्रिय उनका कौन होगा? चौथा पक्का देख लो, 1 2 3 4 कौन सा? चौथा। आप पक्का सबका एक ही जवाब, एक मत, कोई लड़ाई नहीं, पॉलिटिक्स सीट बाजी, ठीक है। तो चौथा पुत्र, क्यों? उसने अपने माता पिताजी के पास लाकर उस पुत्र को मिला दिया, यही तो कारण है। तो इसी प्रकार से इस संसार में सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क क्या है? किसी भी व्यक्ति को उसके ओरिजिनल माँ बाप से मिलवा देना। इस भौतिक संसार में अनेकों जीवात्माएं कहां से आई हैं? उस आध्यात्मिक जगत से यहां आई हैं। तो जब आप किसी को प्रचार करें या बुक्स दें या किसी से डोनेशन मांगे या किसी को मंदिर बुलाएं, तो ये मत सोचिएगा कि आप बड़े जो है वो बड़ा अच्छा काम आपने एक कर दिया। ये तो आपकी ड्यूटी है, यह आपकी मित्रता है उनके माता जी पिताजी से, कि आपको हर एक लिविंग एंटिटी को वापस लेके जाना है। और साथ में याद रखना है कि हम करता नहीं है, वी आर नॉट द डूअर्स, हम करता नहीं है। ये भगवान ने हमको निर्धारित किया है कि हम निमित्त बनेंगे, हम उसका मीडियम बनेंगे, माध्यम बनेंगे, और हम उस व्यक्ति को वापस भगवत धाम लेके जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति कपड़ा दे रहा है, जो व्यक्ति धन दे रहा है, जो व्यक्ति खाना दे रहा है गरीबों को, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस गरीब को, उस व्यक्ति को, गरीब हो या अमीर हो, उस व्यक्ति को कृष्ण का नाम प्रदान करना, उसके माँ बाप का एड्रेस बताना और बताना, देखो तुम भगवान को भूल गए हो, चलो वापिस अपने कृष्ण के पास में, वही तुम्हारे परम पिता है कि नहीं है? तो इस तरह से हमें समझाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें श्लोक से हमको ये समझना चाहिए कि अंत काल में जैसा भी स्मरण करेगा व्यक्ति, वैसे ही शरीर प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति, बताते हैं भगवत गीता में, कम कपड़े पहनने का आदी है, जैसे आजकल के मॉडल्स है ना, या तो पुरुष लोग जो है वो ऊपर पहनने में सोचते नहीं है, वो उतार देते हैं शर्ट, है ना, क्या करते हैं अपना फिजिक दिखाते हैं, और जो है जितनी भी लेडीज हैं वो छोटे कपड़े पहनती हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब अपने शरीर जो भगवान का दिया हुआ है, भगवान की सेवा में लगाना है, उसका मिस यूटिलाइजेशन, दुरुपयोग करने के कारण क्या होता है, भगवान कहते हैं मैं कौन हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सबका कौन हूं, फ्रेंड हूं। क्या हूं? फ्रेंड मतलब दोस्त, दोस्त हूं। तो दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी वही चीज प्रदान करूंगा जो तुम्हारी इच्छा है, अभिलाषा है। क्या इच्छा है तुम्हारी? कम कपड़े पहनने की, ये लो पूरे उतार देता हूं, मन वृक्ष बना देते हैं, खड़े रहो। और वो तो इंडिया में बनाया तो फिर भी ठीक है, कभी कभी धूप, कभी सर्दी, कभी बारिश। न्यूयॉर्क में बना दिया तो बर्फ गिरती रहेगी, लंदन में बना दिया तो, साइबेरिया में बना दिया तो भालू चढ़ेंगे और बर्फ के अलावा कुछ होता ही नहीं, कभी भी सूरज ही नहीं निकलता। साइबेरिया में, रशिया में बना दिया तो क्या करेंगे? थोड़ी बताया भगवान ने गारंटी दी कि वृक्ष बनाऊंगा तो इंडिया में बनाऊंगा, वृंदावन में बनाऊंगा, फरीदाबाद में बना दूंगा, 23 सेक्टर में, नहीं, कहीं भी बना सकते हैं आपकी आसक्ति के अकॉर्डिंगली। तो और हो सकता है किसी व्यक्ति को सोने की बहुत आदत है, सोता ही रहता है, जब देखो तो मिस्टर स्लीपिंग, सुबह उठो तो स्लीपिंग, आफ्टरनून में स्लीपिंग, ऑफिस में भी स्लीपिंग, कॉलेज में भी स्लीपिंग, रात को भी स्लीपिंग, खाते खाते भी स्लीपिंग। तो ऐसे स्लीपिंग को भगवान कहते हैं मैं कौन हूं, तुम्हारा दुश्मन हूं, है ना, मित्र हूं। जो मित्र है तो फिर क्या कहेंगे भगवान, मैं तुम्हें ऐसा शरीर प्रदान करूंगा आराम से सोते रहो, कौन सा शरीर देंगे, भालू का, 6 महीने सोने वाला, मस्त सोता रहेगा आराम से, थैंक यू गॉड, खुश हो जाएगा शरीर। सोचिए किसी व्यक्ति को मांसाहार खाने की आदत है, नॉन वेज के बिना वो रह नहीं सकता, भगवान कहेंगे ठीक है तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है बेटा, लाता है, खरीदता है मार्केट से, फिर चढ़ाता है, उबालता है, काटता है, मैं तेरी मदद करता हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा, जस्ट गो ईट, जाकर अपना ले। तो लायन का शरीर, शेर का शरीर प्रदान कर देते हैं, मित्र है ना वो, तो हेल्प कर रहे हैं हमारे, है ना। आप सोचेंगे अरे 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 आदमी से जानवर बन गया, वो उसको चाहता था तो वैसा बनेगा ना, इसीलिए बोला है यम यम वापिस स्मरण भावम, जैसे जैसे भाव के साथ अपने शरीर का त्याग करेंगे वैसा शरीर प्राप्त करेंगे। एक और भगवद गीता का श्लोक उसमें आता है, कारणम गुण संगो सद असद योनि जन्मसु, जैसे जैसे कारण गुण के साथ आप संग करेंगे अपने जीवन में वैसी वैसी योनि प्राप्त होगी। अगर तमोगुण के साथ संग करेंगे, शराब पी रहे हैं, अंधेरों में रहने की आदत है, कैंडल लाइट डिनर की बहुत आदत है, तमोगुण के जो है वो ऑप्शन ऐसा रहेंगे तो अगला जन्म कैसा मिलेगा, बैगर्स, तमोगुणी है ना, बैगर्स, नहाते नहीं है 10 दिन तक, कह रहे तो पहले भी नहीं नहाता था भगवान कहेंगे अब भी तेरे को, अब तेरी टेंशन ही खत्म कर दी, भिखारी को जरूरत ही नहीं नहाने की, जितना कम नहाएगा उतना ज्यादा दान मिलेगा उसे, है कि नहीं? नहा के आएगा तो कोई देगा दान, अरे अच्छा खासा है नमाता क्यों नहीं है, खटा फटा पूरा एकदम यहाँ तो उसको ले बेटा ले तू ले, देंगे कि नहीं? तो इसलिए वो तो अच्छा हो गया उसके लिए, वो नहाने की उसकी इच्छा नहीं थी, तो तमोगुण नहीं था, दस दस दिन नहाता नहीं था। ऐसे ही हमारे एक मित्र थे पहले जहाँ हम काम करते थे वहाँ पर, वो क्या करते थे सैटरडे संडे ऑफ होता था हमारे मल्टीनेशनल में, तो वो फ्राइडे के दिन जो है ना बड़ा खुश होता था, हाँ हाँ मज़ा आ गया साहब है ना स्लीपिंग स्लीपिंग, मतलब क्या हुआ? बोला अब मैं ना लॉन्ग वीकेंड पर चला जाता हूँ। क्या लॉन्ग वीकेंड है? तो वो सोता था व्यक्ति फ्राइडे को रात को जाके, सैटरडे पूरा दिन, संडे पूरा दिन, मंडे की मॉर्निंग में उठता था, खाता भी नहीं था। मैं हैरान होता था, कैसा जीव है? कह रहा मुझे बड़ा आनंद आता, सारे ना छह दिन पांच दिन की थकान निकल जाती है पूरी, कहाँ निकल रही है पता नहीं कहाँ पर, ऐसा रिचार्ज बैटरी उसकी इतनी लंबी लॉन्ग ड्यूरेशन, स्मार्टफोन होता है ना चार्जर में ही लगा रहता है, वैसे वो स्मार्टफोन की तरह था, उसका फोन तो स्मार्ट था उसके पास भी, एक खुद डल था वो ज्यादा एकदम डल, पांच दिन काम दो दिन आराम। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसा शरीर प्राप्त हो जाएगा आपको, तो ऐसा व्यक्ति जो तमोगुणी है उसे क्या मिलेगा अगले जन्म में जाके? तो आदमी लोग हमसे पूछते हैं कई लोग, अरे प्रभु जी आप लोग ऐसी बातें करते हैं, गीता बोलती है ये बोलती है, किसी ने देखा है कल कौन क्या बना? किसी ने देखा है? कैसे बोलेंगे किसी आदमी को हमने देखा है? हाँ देख रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए अगर MBBS के कॉलेज में आपने एडमिशन लिया आफ्टर 12th 12वीं के बाद MBBS के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किए, तो पांच साल बाद क्या बनेंगे? पक्का ऐसा तो नहीं इंजीनियर बन जाएंगे? हाँ क्यों प्रभु जी क्या बनेंगे? और इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसे हैं पहले साल, तो चार साल बाद क्या बनेंगे? पक्का डॉक्टर तो नहीं? पक्का तो देख लीजिए, इसका मतलब आप जानते हैं, बुद्धि दी है भगवान ने आपको सोचने के लिए। इसी प्रकार से आज जो हम कर रहे हैं वो कल का ही तो है, पांच साल बाद व्यक्ति डॉक्टर ही बन रहा है, इंजीनियर थोड़ी बन रहा है। तो आज अगर कोई व्यक्ति तमोगुण का संग कर रहा है तो फिर वो अगले जन्म में क्या बनने वाला है? तो ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन है, लेकिन वो रिजल्ट आ रहा है ना, वही तो उसी लाइन सेगमेंट में भगवान आपको डिग्री देने वाले हैं। ये लो तमोगुण की डिग्री, अब तुम रहो भिखारी बन के। रजोगुण, रजोगुण में जो व्यक्ति रहना चाहता है, आज रजोगुण में रहता है, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, भगवान मैं अनलकी हूँ, मैं अनलकी हूँ, इस बार तो बन के दिखा दूंगा, एक बार तो बन के दिखा दूंगा, छोटे लेवल में बन जाऊं, बड़े लेवल में बन जाऊं, लगा रहता है। अरे इतना परेशान मत हो, अगले जन्म में तुझे मैं फिल्म स्टार के घर में जन्म दे दूंगा, फिल्म स्टार बना दूंगा आपको, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, कुछ भी स्टार, तारा डूबता हुआ बना देंगे भगवान, तो वो भगवान आपको तारा बनाएंगे, ऐसी डिग्री प्रदान कर देंगे। सत्वगुण में रहना चाहते हैं, अगर आज दान देते हैं, गाय को हरी घास खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, वृद्धाश्रमों में सेवा करते हैं, सत्वगुण में रहते हैं, अगले जन्म में मदर टेरेसा बना देंगे, ले पूरा जीवन ही तेरा जो है ना घर ना बाहर, बस बाहर ही बाहर अपनी सेवा करते रहो, खुश रहो। तो खुश रहना चाहते हैं भगवान, चाहते हैं मेरे बच्चे सब खुश रहे, जो आपकी इच्छा वैसा ही आपको प्रदान करेंगे। अभी जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि कृष्ण के लोक में क्या मिलने वाला है या भक्ति में क्या आनंद मिलने वाला है, वो व्यक्ति फिर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को त्याग देगा, वो क्या करेगा? भक्ति करेगा अपने जीवन में, जो इन तीनों गुणों से ऊपर है, क्या करेगा? भक्ति करेगा। और भक्ति करने से उसको क्या मिलेगा अगले जन्म में? हाँ क्या होगा? जन्म नहीं होगा, क्या होगा? हवा में बन जाएगा। क्या करेगा वहां जाके? गाड़ी चलाएगा, क्या करेगा घर रह के? कुछ तो करेगा, खाली बैठ जाएगा, सेवा करेगा, ठीक है। और अगर मई नहीं गया तो गारंटी थोड़ी चला जाएगा, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदी है, रजिस्ट्री करा ली, जाएगा ही जाएगा। हाँ भक्त बन जाएगा। तो अगर वो नहीं भी गया तो एटलीस्ट कम से कम भक्त के घर में तो जन्म लेगा, स्टार्टिंग से क्या बोल सकेगा? अरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा ऐसा करना बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में हम कृष्ण के नामों को इतनी बार उच्चारण कर लें कि अंतकाल से पहले पहले अगर कभी आ जाए तो फिर क्या होगा? हमें हम भगवत धाम जाने का हमें मौका मिल जाएगा। अन्यथा क्या होगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी तो जीना बरसों, ऐसे लोग बोल सकते हैं। अरे प्रभु जी आज क्या करें, देखेंगे कल करेंगे। अरे दीक्षित भक्त भी पूछ रहे थे मेरे से एक बार, मैं एक जगह प्रवचन देने गया, दीक्षा ले रखी है, प्रभु जी अगर माला नहीं हो पाए तो कल कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट डे। माला नहीं हो पाया मतलब, मैं तो क्वेश्चन ही सुन के हैरान हुआ कि आपने तो दीक्षा ले रखी है, हाँ प्रभु जी 6 साल हो गए। मैंने कहा अरे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप माला का अगर आज नहीं हो पाए तो कल ले सकते हैं, क्वेश्चन ही रॉन्ग है आपका। अरे नहीं हो पाए तो गर्दन काट देना सुबह उठ के अपने, नहीं हो पाए क्या होता है, जितनी आपने अग्नि के सामने साक्षी मान के बोला उतनी तो आपको पूरी करनी है। कह रहे हैं प्रभु जी घर में बीमार हो, बच्चा हो, ये हो वो हो, खाना पीना है। मैंने कहा कि अच्छा एक बार बताओ आप क्या क्या चीजें छोड़ देते हो जब कोई सबकारी प्रॉब्लम होती है, नहाना छोड़ देते हो? नहीं। फिर दफ्तर जाना छोड़ते हो? 2 दिन की छुट्टी लेके प्रभु जी फिर करते हैं मैनेज जैसे भी। खाना छोड़ते हो? नहीं, वो थोड़ा बहुत जैसे भी ऊपर नीचे करते तो हो ना, एक्टिविटी लेवल पे करो, मन नहीं लग रहा लेकिन करो तो, संख्या तो पूरी करो अपनी कम से कम। बोला कि हाँ लेकिन अगर फिर भी कभी हो जाए। तो ऐसे एक डिवोटी थे, इनिशिएटेड नहीं थे लेकिन डिवोटी थे, बहुत अच्छे। वो एक दिन मेरे को मिले, क्या कर रहे थे सुबह मंदिर में, मैंने उनको देखा वो जप कर रहे हैं। फिर मैं चला गया, उस दिन कुछ हमारा रिहर्सल चल रहा था वहाँ पे ड्रामा का मंदिर के अंदर, तो देखा थोड़ी देर बाद में फिर वो करके प्रसादम के लिए आया, देखा वो फिर जप कर रहे हैं। फिर मैं चला गया कुछ सेवा के लिए, फिर शाम को फिर लौटा आरती के टाइम फिर जप कर रहे हैं। मैं पूछा आज प्रभु जी आप तो हरिदास ठाकुर बन गए साक्षात, 128 माला? कह रहे नहीं नहीं 200। मैं क्यों, आज क्या है, आज कोई फेस्टिवल भी नहीं है? और नहीं प्रभु जी एक्चुअली मेरे ना 3 हफ्ते से पेंडिंग चल रही थी, 16 6 रह गई, 10 हुई आज, आज 14 हुई तो 2 रह गई, ऐसे 16 में से लिख लिख के पेज बना रखा था 200। कह रहे टोटल करके फिर घर पे पूरा मैथमेटिक्स करके कैलकुलेटर से 200 निकाल के लाया था डिजिट, और बैठ के आज 200 करके जाऊंगा पूरा। ये कोई वो थोड़ी है, मतलब हिसाब किताब थोड़ी है, ये भगवान के लिए प्रेम है। आज नहीं पैदा किया तो कल नहीं होने वाला है, इसलिए आज एज इट इज, आज के दिन, टुडे ओनली, देयर इज नो टुमारो। कल हो ना हो किसको पता, सुबह होगी कि नहीं होगी मालूम है ना। तो इसलिए ऐसे एक राजा थे जिनका नाम था भरत, भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे राजा भरत, पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरी पृथ्वी के, ये खाली इंडिया के भरत नहीं, पूरी पृथ्वी के राजा थे राजा भरत। और उन्हीं के नाम पर ये जो आज जैसे बोला जाता है उनको बोलते थे भारत देश बोलते है ना, तो राजा भरत के ऊपर ही है। और बहुत ही बुद्धिमान राजा थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उस राज्य को चलाया, इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। सबसे अच्छा राजा वो जो खुद भी भक्ति करे और नीचे वालों को भी भक्ति कराए। राजा पृथु ऐसे राजा थे जो उनके राज्य में लोग रहते थे उनसे वो पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? बोलते जी घर में दाल रोटी की दिक्कत है। फिर ठीक है तुम्हारी नौकरी वहां लगा दी, दाल रोटी वहां से चलेगी, माला करो, रिपोर्ट दिया करो हमारे सिपाही को सैनिक को कि तुमने कितनी माला करी। ऐसे हर एक व्यक्ति से पूछते थे। आज कोई पूछता है? आज तो लोग उल्टा पूछते हैं कितनी माला क्यों करते हो भाई, इतनी माला क्यों करते हो भाई। ऐसा राज्य है आजकल, लीडर ही नहीं कर रहे तो फिर नीचे वालों को नहीं करने देते। तो इस प्रकार का राजा थे राजा भरत। और अपने 50 साल की उम्र बताते हैं कि ये 0 से 25 साल ब्रह्मचारी जीवन, 25 से 50 अपना ग्रस्त जीवन और 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 के बाद संन्यास। लेकिन जिसकी भावना जल्दी संन्यास लौट जाए तो आपकी उम्र में भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इसलिए क्या बताया गया कि 0 से 25 ब्रह्मचारी रहना चाहिए व्यक्ति को, और उसके बाद में क्या करना चाहिए, 25 से 50 ग्रस्त। ग्रस्त का मतलब ये नहीं है त्रस्त, आनंद एंजॉय, फिल्म देखने के आजाद आई एम ग्रस्त, ओ एंजॉय एंजॉय, घूमो फिरो मॉल में जाओ, ये नहीं है। ग्रस्त का मतलब प्रिपेयरिंग फॉर द वानप्रस्थ, वानप्रस्थ की तैयारी करने के लिए ग्रस्त जीवन दिया गया। और 50 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को वन में ही जाना चाहिए। आप देखिए मैथमेटिक्स भी सिखाती है, आप कहेंगे मैथमेटिक्स कैसे सिखाती है, देखिए मैथमेटिक्स क्या कहती है, 51 बोलते ना, 50 के बाद क्या आती है गिनती, 51 जाना वन, रुक क्यों गया घर में, जाना वन, वन भगवान बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स में भी मैंने बोल दिया जा वन, लेकिन जाता ही नहीं है। 51 में नहीं जाऊंगा बाबा, नहीं जाऊंगा, 60 में नहीं जाऊंगा, यही रह जाऊंगा पर मैं नहीं जाऊंगा संसार छोड़ के, फिर वहीं वापस आना पड़ेगा। इतनी आसक्ति किस चीज की, डिटैच होना सीखना चाहिए, ना आपका था ना आपका होने वाला है, और आपको मालूम भी नहीं है, आप इतना अटैच हुए बैठे हैं कब मौत आएगी कब मृत्यु आएगी, और तुरंत कल तक थे चले गए, और फिर व्यक्ति वेट भी नहीं करता, वो तुरंत के तुरंत उनको वहां से निकालना चाहते, वही पुत्र वही परिवार वही भाई बहन जिनको आप इतना प्रेम देना चाह रहे हैं, जिनके लिए आप घर नहीं छोड़ना चाह रहे, वही क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी ले चलो, बहुत क्या आ रही है, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है इनके अंदर से, तुरंत उनको जला दो। हाँ वेट भी नहीं करते जो फ्लाइट से दूर से आ रहे होते, कह रहे बर्फ का खर्चा करवा रहे जल्दी करो फटाफट। तो तो उस शरीर के लिए, उस परिवार के लिए हम वन नहीं जाते, वृंदावन नहीं जाते, माला नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, क्यों? परिवार है प्रभु जी, परिवार, वही परिवार धक्का मार के नहीं जाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार को धक्का मार दें, लेकिन डिटैच होकर रहे, अलग होकर, जैसे पानी में फूल रहता है ना, कमल बोलते पानी में रहता है लेकिन उसके ऊपर एक बूंद भी उसको गीला नहीं कर पाती है कमल को, उसी प्रकार से रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के नामों का जप करते रहिए, शास्त्रों का अध्ययन करते रहिए, साधु संग करते रहिए, है ना। ऐसे नहीं है जैसे ये सत्संग बंद करते रहिए, बंद हो रहा है, कह रहे प्रभु जी थोड़े दिनों में प्रभु जी बंद ही हो जाएगा, ऐसा नहीं, साधु संग करना है, सत्संग बंद नहीं करना है, करते रहिए रेगुलरली, देन यू विल बी डिटैच्ड, आप रहेंगे। तो राजा भरत इसी प्रकार से 50 साल की उम्र में सब कुछ त्याग कर कहां चले गए? वन चले गए। क्या? वन, गो टू वन, वन चले गए। और वन में जाकर क्या करने लगे? अरे कृष्णा,
अरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
और वन में जाकर तो वो कैसे व्यक्ति थे राजा भरत, माता जी बताएंगी कैसे व्यक्ति से राजा भरत, अच्छे थे बुरे थे? क्या क्या अच्छाई करी उन्होंने आपके साथ? भगवत प्रेमी थे, वेरी नाइस। और ठीक है, आप बताइए प्रभु जी, पीछे बैठे हैं प्रभु जी, आप बताइए क्यों अच्छे थे भरत महाराज, बोलिए क्यों अच्छे थे भरत महाराज?
उनके शासन में कोई दुखी नहीं था,
उनके शासन में कोई दुखी नहीं था, वेरी नाइस। और आप बताइए दीपक प्रभु, भक्त थे वो, वेरी नाइस। माता जी, हाँ, धार्मिक विचारों के थे और न्यायपूर्वक कार्य करते थे, हाँ, सबको भक्त बनाते थे, वेरी नाइस। और इतना सब करके वैरागी भी थे, घर को त्याग भी थे, अपने बड़े पुत्र को सारा शासन देकर जंगल में चले गए, जाकर जप भी करने लगे। और जप जप करने बैठे तो जप करते करते वहां पर क्या देखा, एक दिन जल को पान कर रहे हैं, है ना, नदी नहर होती है जहां पर, वहां पर झरने में नदी में से जल में से पानी पी रहे थे, वहां देखा एक शेर एक हिरणी के पीछे पड़ा है, जो हिरणी कौन है, गर्भवती है, बच्चा पैदा करने वाली है, और उसके पीछे शेर पड़ा है। तो ये जब देख ही रहे थे, इतने में शेर की दहाड़ से हिरणी घबरा गई और उसका वहीं पर क्या हो गया, बच्चा पैदा हो गया, और वो बहकर झरने में नीचे आ रहा था। तो इन्होंने वहां जब पानी पी रहे थे, पानी पीना त्याग दिया और उस बच्चे को ऐसे करके उठा लिया, और उठाकर कहां ले आए, अपनी कुटिया में ले आए जहां पर रहते थे। और हर टाइम क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और साथ में उस हिरण के बच्चे का भी ख्याल रखने लगे। तो पहले कितनी माला करते थे, 64 माला, कुछ दिनों बाद कितनी करने लगे, 32 माला, फिर कितने बाद करने लगे, 16, रिड्यूस आपने करी थी क्या, आपको मालूम, 16 माला करने लगे, उसके बाद हाँ अरे बंद ही कर दिए, माला ही करना बंद कर दिए, हिरण का ख्याल रखते थे हर टाइम, हर टाइम ये देखते थे हिरण कहाँ गया, मेरा हिरण कहाँ गया। वो हिरण बड़ा होने लगा और वो भी चाटता था उनको हर वक्त, और वो हिरण का ही ख्याल रखने लगे। और एंड टाइम में क्या हुआ, एक दिन हिरण को चोट लग गई, जंगल में से कांटे लग जाते हैं ना, उसके पांव में कांटे लग गए और वो उछल उछल के चलने लगा, जैसे देखते हैं ना हमारे रास्ते में भी कुत्तों को चोट लग जाती है तो एक टांग से ऐसे उछलते हैं, ऐसे वो जानवर उछल उछल के चलने लगा और उनको बहुत कष्ट होने लगा, देखो मेरा प्रिय छोटा सा हिरण कितनी तकलीफ में है। और उसके साथ में वो क्या करने लगे, सोशल वर्क करने लगे, उसको प्रेम देने लगे, इतना प्रेम दिए कि एक दिन उनके स्वयं के कांटा चुभ गया जहरीला, और फिर उनको क्या हुआ, अंतिम समय जाना पड़ा। जब जा रहे थे तो उनको वो हिरण याद आ रहा था कि कहाँ चला गया, 2 दिन से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और चल नहीं पा रहे थे इसके कारण, ढूंढ भी नहीं पाए उसको, और हिरण को आवाज लगाने लगे, हिरण तुम कहाँ हो, मृग मृग, और हरि बोल चले गए। अभी क्या किया, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम, अंत काल में जब शरीर त्यागे तो किसका स्मरण कर रहे थे, अरे इतने बड़े भक्त, इतने बढ़िया राजा, इतना सब त्याग, इतना सब वैराग होने के बाद ये स्थिति, जस्ट फॉर वन अटैचमेंट, अटैच होने के कारण, एक हिरण से अटैच होने के कारण। फिर क्या किए, अब अगला शरीर किसका मिलेगा, भगवान की हिरण का मिला, हिरण के शरीर में, लेकिन उनको क्योंकि वो भक्त थे, अपना पुराना जीवन उनको याद था, विचारवान होने के कारण मंदिर के प्रांगण में जाकर बैठ जाते और क्या सुनते, कथा सुनते, कीर्तन सुनते। और भक्त बोलते हैं कि उनके हिरण की आंखों से, नेत्रों से आंसू निकलते, कि वो रोते हैं कि मैंने क्या किया, अंतकाल में एक हिरण के चक्कर में अपना पूरी योनि मैंने वेस्ट कर दी, मैं राजा भरत के नाम से जाने जाने वाला राजा आज एक हिरण की योनि में आकर फंस गया। ये आत्मा इस शरीर के अंदर फंसी हुई है, ये मजे लेने के लिए नहीं है, फंसी हुई है इसके अंदर। आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, बाहर से ताला डाल दिया जाए तो क्या बोला जाएगा? बड़े आनंद में है? नहीं, तो कष्ट में है। तो इसी तरह ही कष्ट में है, शरीर में हमारी आत्मा फंस गई है आकर। हम तो आत्मा है ना, शरीर नहीं है। तो फिर उसी प्रकार से उस हिरण को यह समझ में आया और क्या खाने लगे, क्योंकि कथा सुनी थी उन्होंने। क्या खाते थे? प्रसाद, घास। अरे हमारी तरह थोड़ी थे, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। वो सूखे पत्ते खाने लगे। जो भी पत्ते सूख कर गिर जाते पेड़ों से वो वही खाते, ताकि वैराग जीवन में उनके आ सके। वैराग, एकदम ही वैराग्य उनके जीवन में आ गया। और एक दिन जंगल में उन्होंने देखा सूखे पत्तों में अग्नि लगी हुई है, तो उन्होंने उसी के अंदर कूद करके क्या किया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन जब शरीर का त्याग कर रहे थे तो किसका स्मरण कर रहे थे? मंदिर में आने वाले भक्तों का स्मरण कर रहे थे। तो भगवान की कृपा से उन्हें फिर से एक बार मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। अब जिस घर में पैदा हुए उस घर में सात भाई, मतलब छह भाई पहले से थे, ये सातवें नंबर के भाई पैदा हुए। जब सातवें नंबर के भाई पैदा हुए तो छह भाई बोलते थे ये छोटा कितना मोटा है और कितना खाता है, कितना खोटा है, ऐसे करके उनको बुरा बुरा बोलने लगे है? और फिर बोलते थे जा तू पेड़ों की रखवाली कर, जंगल में जा खेतों की रखवाली कर। तो उन्हें बैठा दिया जाता था और फिर वहां पर वो चिड़िया उड़ाते थे, बोलते नहीं थे। तो उनके पिताजी क्योंकि ब्राह्मण थे तो उनको सिखाते थे बोलो गायत्री मंत्र का जाप बोलो, तो ये मुंह बंद करके रहते थे, बोलो कुछ तो बोलो। बोलूंगा नहीं, अब इसी बोलने के चक्कर में मैं फंस गया था पिछली दो योनियों में, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा नहीं। हमसे बोला जाए बोलेंगे, ऐसे बोलूंगा नहीं। अरे प्रभु जी बोलना ही तो सबसे डिफिकल्टी है। प्रजल्पा आनंद सबसे दायक, दूसरे की चुगली आ हा हा, ऐसा रस तो कहीं नहीं है, ऑरेंज जूस में भी नहीं मिलता प्रभु जी, रसना में भी नहीं है। जितना आनंद आता है दूसरे की बुराई करने में, बहुत मजा आता है ना। और अनजाने में हम कई बार करते ही हैं, रोज ही करते हैं, किसने किसी की जरूर करते हैं, है कि नहीं? चाहे हम उसमें सहयोगी कर रहे हो, हाँ हाँ कहके बात तो ठीक है, ठीक है बात, मजा आ रहा होता सुनने में। या तो कान से रस लेते हैं या फिर जुबान से रस लेते हैं, या तो बोल के या फिर सुन के। तो इस प्रकार से वो समझ गए थे कि मैं इस शरीर में फंस जाऊंगा अगर बोलूंगा, तो उन्होंने क्या किया, उस शरीर में बोलना मना कर दिया। क्या मैं बोलूंगा नहीं? तो उनके घर वालों ने बोला अरे खोटे सिक्के, काम का न काम का न अनाज का, क्या बोलते हैं, काम का न काज का, दस मन अनाज का, इतना अनाज खाता है काम कुछ करता नहीं, जा यहां से निकल जा। घर वालों ने निकाल दिया, और यही तो चाहते थे, वन में जाना, वैराग्य मिल गया, जीवन छोड़ के घर से बाहर आ गए। अभी रह रहे थे तो वहां पर क्या हुआ, कुछ भील लोग रहते थे। कौन रहते थे? भील। तो भील कैसे बोलते हैं पता है आपको? बोल के दिखाओ, कैसे बोलते हैं प्रभु जी? भील नहीं पता मुझे, कैसे पता होगा, मैं भी भील थोड़ी हूँ। तो भील जैसे भी बोलते थे अपना, और बोले होंगे, तो भील जो बोले तो फिर क्या किया, उनको पकड़ कर ले गए, बोले ये बहुत तंदुरुस्त है, आज हमारी मैया काली मैया को क्या होगा, इसी का भोग लगाया जाएगा, चल। तो बेचारे बोलते तो थे नहीं, बोलना मना किए थे, तो चुपचाप चले गए। चले गए लेकिन मन में क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तीन प्रकार का जप होता है, एक जप होता है उपांशु जप, एक होता है मानसिक जप, और एक होता है वाचिक जप। तो जो मानसिक जप होता है उसमें मुंह नहीं हिलता, मन में होता है, जो कि ये करते थे। और दूसरा होता है उपांशु जप, जो हम लोग करते हैं, हम बोले हम सुने, दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो, है ना। जब सारे भक्त बैठे हो तो हमें ऐसे बोलना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम, ये हम बोले हम सुने। लेकिन जब हम बोले हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम, ये वाचिक जप है, ये एक्चुअली कीर्तन के लिए बनाया गया है। कलयुग में प्रभुपाद बोलते हैं ना ही हमारे लिए मानसिक जप है ना ही हमारे लिए वाचिक, वाचिक से दूसरा परेशान होगा, मानसिक से हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है। मन जो है वो क्या है, माया का फौजी, माया का फौजी है वो, मन मौजी है, मन मौजी माया का फौजी मन हमारा जो है। इसलिए उस मन की ना सुनकर हमें किसकी सुननी चाहिए, भगवान की सुननी चाहिए। और उपांशु जप करना चाहिए, इतने धीरे बोले कि हम सुन सकें, इतना तेज ना बोले दूसरा डिस्टर्ब हो, इतना भी कम ना बोले कि हमें भी सुनाई ना दे, है ना, नींद में। अरे तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि हमें उपांशु जप करना चाहिए। तो वही मानसिक जप उस समय वो करते थे क्योंकि उनके अंदर मन को उन्होंने केंद्रित किया हुआ था भगवान के चरणों में। जब उनको लेके गए तो दुर्गा मैया की मूर्ति थी बहुत बड़ी काली की। कैसी होती काली की मूर्ति? जीभ बाहर निकली होती है और उसमें यहाँ पर वो होते हैं खोपड़ियां टंगी होती हैं बहुत सारी हैं। और फिर उनके आगे ले जाकर लेटा दिया, लो यहाँ पर लेट जाओ। उनका नाम था जड़ भरत, ये व्यक्ति थे इनका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत क्यों? क्योंकि भारत देश में बोलते थे उनके पिताजी तुझसे ज्यादा जड़ बुद्धि कोई नहीं है, इसलिए उनका नाम रख दिया था उनके भाइयों ने जड़ भरत। और जड़ भरत जो थे उनको ले जा गए, उन्होंने लेटा दिया और वो बेचारे चुपचाप लेटे हुए, रस्सियों से बांध दिया उनको और अपने कहने लग गए होंगे जो भी, हुला लला हु, हुला लला हु, ले लो मैया इसको ग्रहण कर लो, आ गया आज मोटा आइटम, ले लो इसको खा लो खा लो, जो भी बोला होगा उन्होंने। और फिर उन्होंने उसको काटा और जैसे ही अपना वो भाला लेकर वो काटने लगे, इतने में क्या हुआ, दुर्गा मैया प्रकट हो गई। दुर्गा मैया ने प्रकट होकर क्या किया, काट डाला, खा लिया, क्या किया, उन्हीं की तलवार से जिससे वो काट रहे थे उन्हीं सारे भीलों को काट दिया, उनकी मुंडी उड़ा दी, छिक छिक कट 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 सबको चॉप कर डाला। क्यों किया, किस कारण से किया? क्योंकि देवी मैया भी उसी का साथ देती हैं जो कृष्ण का भक्त होता है। ये लीला इस बात का स्थापित करती है कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का भक्त है तो उसको दुर्गा जी, शिव जी, गणेश जी की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुर्गा जी भी तभी प्रसन्न होती हैं जब कोई व्यक्ति कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है। शिव जी भी तभी प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है। गणेश जी भी तभी प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति नरसिंह भगवान की प्रार्थना करता है, क्योंकि गणेश जी हैं विघ्न विनाशक लेकिन नरसिंह भगवान है भक्ति विघ्न विनाशक, है ना। तो गणेश भगवान जी जो है वो नरसिंह भगवान जो है वो गणेश जी के गुरु जी हैं, है ना। तो गुरु जी की शरण में जाना चाहिए बजाय चेले जी की शरण में। चेले जी की में जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गुरु जी की में जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने जब उन सारे के सारे लोगों को चॉप कर दिया तो सब समझ गए कि भैया ये कोई स्पेशल आदमी है, इसको छोड़ दो। तो उन्हें फिर छोड़ दिया गया। फिर वो किनारे आकर बैठ गए और भगवान के नामों का उच्चारण करते रहे। क्या बोलते रहे? हाँ, ये बोलते रहे, कीर्तन करते रहे भगवान के नामों का। तो फिर वहां से एक राजा जा रहे थे, उन राजा का क्या नाम था, महाराज रहुगुणा, महाराज रहुगुणा। और महाराज उनके पालकी में बैठ के जाते थे, उस समय कोई रथ वगैरह नहीं था तो नीचे चार उनको पालकी वाले उठाने वाले थे। तो पालक जो थे उनको उठाकर लेके जा रहे थे और बोलते जा रहे थे महाराज रहुगुणा की जय हो, महाराज रहुगुणा की जय हो, लेके जा रहे थे। और पालकी के ऊपर विराजमान महाराज रहुगुणा कहाँ जा रहे थे, कथा सुनने जा रहे थे, भगवान की कथा सुनने जा रहे थे। इसका मतलब वो भी एक भक्त थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि पालकी बहुत स्लो चल रही है और कथा का समय निकला जा रहा है। तो पालकी वाले को बोले तेज चलो, बोला मैं बीमार हूं, बुखार आया हुआ है महाराज, नहीं चल पा रहा हूं। तो बोले किसी और को लगाओ, पालक की कमी है महाराज, पालक नहीं है हमारे पास, इस आदमी को बुलाओ, ये भी हमारे राज्य का है, बुलाओ इसको, बुलाओ। तो जड़ भरत बैठे थे किनारे चुपचाप भगवान के नामों का चिंतन कर रहे थे, उनको बुला लिया, बुला लगाओ इसको। तो विशाल शरीर के थे, लंबे चौड़े, पालक सारे छोटे छोटे दब गए थे पालकी उठा उठा के। तो ये लंबे उठा लिए और जब चलते थे तो नीचे जमीन में चींटियों को देखते थे, कोई चींटी तो नहीं मर रही है, फिर जंप करते थे, फिर चलते थे, फिर चींटी देखते थे, जंप करते थे। महाराज रहुगुणा पूरा हिल जाता था ऐसे करके, कहता ए पालक ठीक से चलो, पालकी सही से उठाओ वरना मैं तुम्हें क्या करूंगा, देश निकाल दे दूंगा, अपने राज्य से निकाल दूंगा। तो ये तो चुप रहने का व्रत लिए थे, चलते रहे, फिर चींटी देखी, फिर उछल गए। बोला सुनता नहीं है, बहरा भी है, बोलता नहीं है, गूंगा भी है, समझ नहीं आती, राजा हूं मैं रहुगुणा, तेरे को अभी 2 मिनट में बता दूंगा कैसे चलते हैं पालकी लेके। तो फिर उसने पालकी नीचे रख दी और महाराज रहुगुणा नीचे उतर आए। महाराज रहुगुणा आकर उसको बहस करने लगे, कैसे व्यक्ति हो, कैसा व्यक्ति हो, तुम्हें पता नहीं एक राजा की क्या वैल्यू होती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है। तो पहली बार बताते हैं शास्त्र में कि वो पहली बार जो जड़ भरत थे वो बोले कि मुझे पता है एक राजा की क्या वैल्यू है। क्या वैल्यू है? बोले ये वैल्यू है कि वो राजा इस जन्म में एक राजा है और अगले जन्म में वो फकीर हो सकता है, हो सकता है कि अगले जन्म में मैं राजा बन जाऊं, है ना। ये राजा तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है, है ना। तो वो बोले राजा बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं अभी तुम्हें मारूंगा तो क्या मरेगा? कह रहे कुछ भी नहीं मरेगा, आप मुझे कैसे मार सकते हैं, क्योंकि जो सृष्टि में मेरी आत्मा है वो तो कभी मरती नहीं, और शरीर तो जब पैदा हुआ तभी इसका नाम क्या था, मरण धर्मा, इसका तो धर्म ही मरने का है, ये तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है। तो इसको ये मरियोच इसको मारकर तुम क्या राजा अपने आप को बड़ा वो ब्रेव समझ रहे हो, बड़ा वीर समझ रहे हो? और आत्मा नैनम छंदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावक, ना इसे कोई छेद सकता है, ना कोई इसे जला सकता है, ना कोई इसको उड़ा सकता है, ना कोई काट सकता है। अरे ये तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, कौन हो तुम? तो बोला कि मैं जड़ भरत हूं, मैंने इस प्रकार से अपने जीवन में दो योनियां बदली अपने पिछले जन्मों में, और फिर मैं समझ गया कि जीवन का श्रेष्ठ क्या करना और ज्यादा लोगों से नहीं बोलना। प्रभुपाद जी बोलते हैं मौनम सर्वम विजयते, मौन व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है। ज्यादा लोगों से बोलना नहीं चाहिए, कोई ज्यादा आपको ज्यादा बोलने लग जाए ना, गालियां देने लग जाए, बुरा भला बोलने लग जाए, तो उस व्यक्ति के पैर छूने चाहिए, उसको दंडवत करना चाहिए, थैंक यू आपने मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म काट दिए। आप देखिए आपके घर में जो रेगमाल होता है ना, रेगमाल देखा है आपने, क्या होता है रेगमाल? क्या जंग छुड़ाने के लिए, जंग छुड़ाने के लिए लोहे के ऊपर रेगमाल का इस्तेमाल होता है। रेगमाल जब लोहे के ऊपर रगड़ा जाता है तो जंग हट जाती है और लोहा चमकने लगता है, और रेगमाल कैसा हो जाता है? यूजलेस हो जाता है। लेकिन जब रगड़ा जाता है ना तो लोहे के ऊपर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे रेगमाल मिलते हैं हमको, है ना, इस लोहे के ऊपर जंग लग गई है। कौन सी जंग? वो जंग जो कृष्ण जैसे चुंबक से चुपक नहीं पा रही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम कृष्ण से चुपक सकते हैं, चिपक सकते हैं, है ना, मैग्नेटिक अफेक्शन अट्रैक्शन, लेकिन क्योंकि जंग लगी हुई है भौतिक संसार की, इसलिए चिपक नहीं पाते हैं। तो जब हम चिपकना चाहेंगे तो इस जंग को हटाना पड़ेगा। तो ये जंग या तो भगवान का नाम लेने से हटेगी, या फिर भक्तजनों से हटेगी जो आपकी बुराई करेंगे, जो आपको बुरा भला बोलेंगे। वो जब रेगमाल का काम करेंगे, आपकी जंग हटाएंगे, तो फिर क्या होगा, आप तो कृष्ण से चिपक जाएंगे, लेकिन रेगमाल क्या होता है, जंग को छुड़ाने के बाद रेगमाल को कहां फेंकते हो आप? बेकार, यूजलेस हो जाता है। वो व्यक्ति यूजलेस हो जाएगा अपनी लाइफ में अपने आप ही। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं बताऊं, ज्यादा बोल रहे हो तुम, मैं भी पुराना डिवोटी हूं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, कृष्ण ने ऑलरेडी अरेंजमेंट किया हुआ है सारा। तो आप इधर अटैच हो गए, व्यक्ति पूरा परमानेंटली अटैच हो गया। इसलिए जब हम किसी को बोले तब सोचना चाहिए अरे मैं भी रेगमाल का काम कर रहा हूं इसके लिए, और जब कोई बोले तब सोचना चाहिए मेरे लिए रेगमाल का काम कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन दिस। उसी प्रकार से महाराज रघुनाथ को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कौन है, अंतरूणी ज्ञानी है, आत्मज्ञानी व्यक्ति है। दो प्रकार के व्यक्ति वृद्ध होते हैं, एक होते हैं आयु वृद्ध और एक होते हैं ज्ञान वृद्ध। किसकी ज्यादा वैल्यू है? पक्का लॉक किया जाए 1 करोड़ आपके हुए। तो आयु वृद्ध और ज्ञान वृद्ध, ऐसी एक बार एक राज्य की कथा चल रही थी। एक राजा थे और उस राज्य में क्या हुआ कि बहुत सारे ऋषियों को बुलाया गया जिनकी उम्र क्या थी, 10,000 साल, 1,000 साल, इस प्रकार के ऋषियों की सभा थी और सारे ज्ञानी थे। हाँ, ज्ञानी, बहुत ज्यादा ज्ञानी। लेकिन उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति आते हैं भक्त जिनकी उम्र थी सिर्फ 8 वर्ष। कितनी? तो जो राजा था उसने सारे ऋषियों का स्वागत किया, आइए आइए माता जी, आइए आइए, आइए आइए प्रभु जी, आइए आइए, आइए आइए ऋषि, आइए आइए, आइए आइए, सबको बुला रहा था। लेकिन जब ये 8 वर्ष के उनके राज्य में घुसे तो राजा क्या किया, मुकुट उठाकर साइड में रख दिया, नीचे उतरा, राजा से सीट से उतर कर दंडवत प्रणाम किया। सारे ऋषि खड़े हो गए इसके प्रणाम करते, अपमान है, अपमान है, अपमान है, सभा को त्याग दो, सभा को त्याग दो, सारे बाहर निकले। क्या हो गया भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने, प्रणाम ही तो किया है। कह रहे हम जब आए, जो 10,000 साल पुराने ऋषि हैं, सीनियर डिवोटी, उसको देखकर तुम प्रणाम नहीं किए। एक जूनियर डिवोटी, एकदम इनिशिएटेड भी नहीं है, नॉन इनिशिएटेड डिवोटी, इसको देखकर तुम प्रणाम कर दिए दंडवत। तो फिर राजा ने वहां पर एक प्रश्न पूछा कि अगर रेगिस्तान में कोई कैक्टस का पेड़ है, रेगिस्तान में कैक्टस का पेड़ है और एक 5 दिन पुराना तुलसी का पौधा है, रेगिस्तान में कोई 100 साल पुराना कैक्टस का पेड़ है और कोई 5 दिन पुराना तुलसी का पौधा है, तो आप लोग किसको प्रणाम करेंगे? आप लोग किसको करेंगे, मैं भी पूछ रहा हूं, किसको करेंगे? पक्का लॉक? ठीक है, तो तुलसी को प्रणाम करेंगे। क्यों करेंगे, आप रीजन भी बता दीजिए, क्यों करेंगे प्रभु जी? हाँ, कैक्टस में काटे हैं गुणों के कारण, गुणवत्ता के कारण। छोटे व्यक्ति को भी प्रणाम किया जा सकता है, क्योंकि आप ही ने बोला आयु वृद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान वृद्ध। जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान गुण है जिसके अंदर, वो छोटा व्यक्ति भी बड़ा कार्य कर सकता है, तो उसको प्रणाम करने में कोई परेशानी नहीं है, है ना। कई बार लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, अरे भाई इस्कॉन में तो ना बड़े छोटे छोटे उम्र के प्रचारक होते हैं, अरे ना हमारी उम्र तो है भाई 60 साल, कैसे प्रणाम करें? अरे भैया आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, 60 साल का हो या 6 साल का हो, आप प्रणाम न उस शरीर को नहीं कर रहे हैं, उसके गुणों को कर रहे हैं। तो हमें भी कभी किसी छोटे व्यक्ति को प्रणाम करना पड़े तो हमें सोचना नहीं चाहिए, अरे ये तो बड़ा छोटी उम्र का है, 24 साल में कीर्तन करता है, तो प्रणाम करना चाहिए हरे कृष्णा प्रभु जी। क्यों? उसके हम गुण को प्रणाम कर रहे, उसके शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे। और 80 साल का अगर व्यक्ति शराब पीता है तो हमें उसको प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? उसको हरे कृष्णा बोल सकते हैं, लेकिन उसको आयु वृद्ध होने के नाते इज्जत देनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि हम उसको फॉलो करने लग जाए, है ना। तो फॉलो हमें गुणों को करना है। तो इसी प्रकार से महाराज रघुगुणा ने क्या किया, उनको अपना गुरु बना लिया। बोले अब मैं कथा में जाना करता हूँ कैंसिल, और तुम्हारे साथ ही क्या करूंगा, प्रवचन करूंगा, और उनको अपना गुरु बना लिया। तो देखिए एक अंतकाल में स्मरण के कारण कितनी लंबी हिस्ट्री हो गई ना। तो आप भी चाहते हैं ऐसी हिस्ट्री बनाना, या फिर वापस जाना चाहते हैं, वापस भगवत धाम जाना चाहते हैं, है ना। तो अगर भगवत धाम जाना चाहते हैं तो दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में बस भगवान के नामों का कीर्तन करते रहिए। एक और छोटी सी स्टोरी सुनाकर अपने समाप्त करेंगे यहाँ पर, बहुत काफी देर है, कुछ लोग तो उठ के चले गए, प्रसाद नहीं मिला उनको। तो इसके कारण क्या बताया गया कि एक बार एक बनिया था। आप में से कितने लोग बनिया है? बनिया कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, वैश्य आप हैं प्रभु जी, बुरा मत मानिएगा कथा में। तो वैश्य जो होते हैं, बनिया कम्युनिटी जो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको हर जगह बिजनेस दिखता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के समय में हर एक व्यक्ति क्या हो गया है, बिजनेसमैन हो गया है, है ना। बताते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक करो कुरुनंदना, कुरुनंदन हे अर्जुन क्या करो, अपनी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका कर लो, बिजनेस माइंडेड कर लो। बिजनेसमैन क्या करता है प्रभु जी बताएंगे, हमारे बिजनेसमैन प्रभु जी क्या करता है, बिजनेसमैन अपने धन को ऐसी जगह लगाता है जहां पर फायदा मिलता है, अपने धन को ऐसी जगह लगाता है जहां मल्टीप्लाई हो, वहां फायदा मिले, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, कुरुनंदन अपनी बुद्धि को एक जगह लगा दो जहां बिजनेस हो, है ना, मल्टीप्लाई हो आपकी आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान। वो कौन से चरण है, कृष्ण चरण में आपको वो बुद्धि लगानी चाहिए। तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो था उसने भी अपनी बुद्धि लगा रखी है, जैसे आज सभी लोगों ने अपने को बिजनेस में या धन कमाने में बुद्धि को लगाया है, तो वो व्यक्ति भी बुद्धि लगाया था। लेकिन उसका एक दोस्त था भक्त, वो बोला अरे क्या तुम पैसा 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 करते हो, चलो मैं तुम्हारे जीवन में वैराग्य लाऊंगा, तुम्हें भक्ति सिखाऊंगा। कह रहा नहीं नहीं ये सब फालतू चीजें होती हैं, अभी 60 साल की उम्र हो जाए उसके बाद रिटायरमेंट में गीता खोलेंगे जब करेंगे, ये लास्ट टाइम की लास्ट बातें हैं, मरना अभी थोड़ी है, जब मरेंगे तब देखी जाएगी। तो इसी प्रकार से लोग भी बोलते हैं। तो उसका दोस्त बोला नहीं नहीं मैं तुम्हें आज लेके जाऊंगा, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मंदिर ले जाऊंगा। वो जाता ही नहीं था, हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना के कैंसिल। तो एक दिन किसी की मृत्यु हो गई गांव में, तो उसका दोस्त बोला ये अच्छा मौका है, जब मृत्यु होती है ना शमशान घाट में जो वैराग उत्पन्न होता है ना, वो वैराग और कहीं उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। उसी टाइम आदमी बोलता है, उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। शमशान में जाओ तो देखिए 100% 80% 90% नहीं 100% लोग क्या बोलते हैं, क्या जीवन है देखो, पता ही नहीं चलता है कैसे खत्म हो जाता है आदमी अचानक, क्या है हवा का गोला है ये है वो, पता नहीं क्या फिलॉसफी अपनी अपनी बोलते हैं सारे, है ना। तो सारी फिलॉसफी जब बोलते हैं तो उनको लेकिन एक चीज पता होती है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, है देखो आदमी भागता रहता है, हम भी भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं शमशान घाट से तो क्या होता है, वापस अपने बिजनेस में लग जाते हैं। हाँ भाई दुकान पे पहुंचा नहीं पहुंचा अभी तक, आज कितनी हो गई, गल्ला कितना हुआ, वापस आदमी बोलता है। तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो था, जैसे ही वो पहुंचा शमशान घाट में और अग्नि जलते हुए देखी तो वो रोने लग गया। तो उसका दोस्त बोला हो गया काम, मजा आ गया, रो रहा है, इसका मतलब अब इसको समझ में आ गया कि जीवन के क्या अंत में क्या हो जाता है। देखो राख है, वैसे एक बोरे में एक कलश में भर जाएगी ये पूरी राख, इतनी एक शरीर की वैल्यू है बस। देखा अब इसको समझ में आ गया, बहुत रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो उसने बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है, इतना रोने की क्या आवश्यकता है। तो कह रहा है कि तेरे जीवन में क्या वैराग कितना उत्पन्न हो गया, इतना रोए जा रहा है, हाँ चिंता मत कर, बस ज्यादा मत रो, बस भगवान के नामों कीर्तन का जितना जरूरी था उतना रोना हो गया। कह रहा है नहीं नहीं मैम इस पे राख वाख पे नहीं रो रहा हूँ, मैं तो ये रो रहा हूँ कि मैंने लकड़ी का बिजनेस क्यों नहीं किया अपनी लाइफ में। अब जाकर वहां पर भी वो अपना बिजनेस प्लान सोच रहा है, अरे चिता पे इतनी लकड़ी लग गई, अगर मैंने लगाया होता तो कितनी लकड़ियां लग गई, कितना प्रॉफिट होता आज मेरा। वो वहां पर वो भी देख रहा है। तो हम भी आज इतने आसक्त हो गए कि हमें लगता है कि सब मरेंगे लेकिन हम नहीं
मरेंगे,
है ना। अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया यक्ष ने कि संसार की सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है ना, अमेजिंग है, सरप्राइजिंग क्या है सबसे आश्चर्यजनक चीज कि हमें लगता है कि सब मरेंगे लेकिन हम नहीं
मरेंगे।
हाँ, इसीलिए तो हम वो नहीं करते हैं जो कि करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोनों हाथों को ऊपर करना चाहिए, बोलना चाहिए हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? आपका
जब भरत जी जो भरत जो हिरण बने तो उन्होंने सुसाइड किया, और यही एक कथा बड़ा हरिदास की भी आती है, उन्होंने भी सुसाइड किया। तो ये सुसाइड तो आई थिंक नहीं करना चाहिए वेदों के हिसाब से, तो उन्होंने सुसाइड करके भी तो एक गलत काम किया।
क्या करें, शरीर में फंस गए
तो, बट पेट तो मना करते हैं कि बॉडी मिल गया तो कैसे करें।
वो तो आपके लिए है ना जो भक्ति कर सकती है, जिसको भक्ति की बॉडी नहीं मिली जब थोड़ी कर सकते थे हिरण के शरीर में, कथा कैसे पढ़ते हिरण के शरीर में, शास्त्र थोड़ी जानते थे, ज्ञान था लेकिन पढ़ नहीं सकते थे ना, जप नहीं कर सकते थे, उसका YouTube बेस्ट वेस्ट था, वो शरीर जला दिया उसको, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे जाके क्या मिलने वाला, ज्ञानी पुरुष है ना। शास्त्रों पर हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये सब क्या है, क्यों ऐसा किया, ये मेन हमारा ये है कि वो गलत किया नहीं किया, हम गलत ना करें। कहानी से हमारे को क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में और अनगिनत चीजों को छोड़कर प्रभु जी उसने मुझे ऐसा बोला फिर क्या किया, ये सही है गलत है, है? उसमें भी हम लगे रहते हैं, प्रभु जी मैंने आज ऐसे रिएक्ट किया, ये सही था ये गलत था, सब छोड़ दो। इम्पोर्टेंट ये है कि अपने जप को ध्यानपूर्वक करो, शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, और क्या करो, मंदिर में ध्यानपूर्वक अपना कीर्तन की सेवा करो, और अपनी जो सेवा है परिवार की और अपने घर की वो ध्यानपूर्वक करो, बस। ज्यादा सोचना नहीं कि वो हिरण क्यों बने, वो बंदर क्यों बने, क्या बने, हम क्या बनेंगे। एक प्रभु जी, एक ने व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद आपने बोला कि हम अपना शरीर छोड़ेंगे अगर इस्कॉन ज्वाइन करके तो हमें धाम प्राप्त होगा, कि आपकी उम्र ज्यादा है तो आप जब धाम में होंगे और हम जब धाम में आएंगे, मतलब कितना सेट है, मतलब वो सोच रखा है धाम में आना ही आना है। कह रहे देखिए आप धाम पहुंच गए और फिर हम धाम में आएंगे तो आप हमको कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि धाम तो आपने बताया तीन गुना इस पृथ्वी से बड़ा, इस भौतिक संसार तो तीन गुना बड़ा आध्यात्मिक है, तो ये भौतिक संसार है यूनिवर्स जिसमें साइंटिस्ट लगे हैं समझ नहीं पा रहे, इससे तीन गुना बड़ा आध्यात्मिक लोक है, तो उसमें आप हमको कैसे पहचानेंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, प्रभुपाद जी ने बोला कि ध्यानपूर्वक जप करो, जब अगर शरीर छोड़ के आप तुम धाम आओगे तो तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, है ना। लेकिन अभी क्या करो, ध्यानपूर्वक अपने जप करो, जप करो, ये बना। हाँ, क्योंकि वो भागेगा ना, ऑब्वियस है, ऑब्वियसली बताया गया है कि अर्जुन जैसा जो श्रेष्ठ जिसके लिए कृष्ण स्वयं आते हैं, और अर्जुन भी क्या प्रश्न पूछे भगवान कृष्ण से, अर्जुन पूछे चंचल भी मना कृष्ण प्रमादि बाल भद्रदम तस्याम निग्रहम मन्यम वायु एवं सुदुष्करम। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु हम कर सकते हैं कंट्रोल, वायु कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप मैं भी नहीं कर सकता, वायु को कंट्रोल कर सकते थे अर्जुन, लेकिन क्या बोले, मैं वायु को कर सकता हूँ, एक तीर मारूंगा तो सारी वायु एक साइड रुक जाती है ऐसी आकाश में, लेकिन चंचलम ही मन कृष्णा, मेरा मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, क्या बोला, असंशयम महाबाहु मन दुर्निग्रहम चलम, इस बात में कोई संशय नहीं है महाबाहु महाबली कि ये मन जो है बड़ा चंचल है, लेकिन दो काम करने पड़ेंगे, अभ्यासेन तो कौंतुए वैराग्येन च गृहते, अभ्यास करो और वैराग्य करो अपने जीवन में। एक तो ये प्रैक्टिस करो रोज जप माला पे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे करो, और साथ में वैराग्य, क्या वैराग्य लेके आना है बताएगा कोई, क्या वैराग्य लाना जीवन में, गाड़ी से चलना छोड़ देना है, एसी फोड़ देना है, टीवी तोड़ देना है, क्या करना है वैराग्य में, क्या वैराग्य, युक्त क्या वैराग्य, हाँ जी को कृष्ण से, हाँ सत्संग, संसार का मोह हटा देना, और माता जी आप हाँ घर से दूर रहना, छोटे छोटे बच्चे थोड़ा दूर रहो उनसे, कमरे में बंद कर दो उनको,
हर कर्म कृष्ण के निमित्त करें,
हर कर्म कृष्ण कैसे करेंगे, जॉब कैसे करेंगे निमित्त कृष्ण के,
जॉब कर रहे हैं तो उसमें ये करें कि हम इससे जो धन उपार्जन करेंगे उसको हम भक्ति में लगाएं,
वेरी नाइस, अच्छा है ये भी, अच्छा से उत्तर आता नहीं ना, मुश्किल है,
नहीं आता है।
तो एक्चुअली वैराग्य का क्या है, वैराग्य का श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वैराग्य का मतलब है कि ये जानना कि कुछ भी चीज मेरी नहीं है, यही वैराग्य है। आपकी लेकिन कई लोग बोलते हैं हम ये चीज छोड़ देंगे, हर चीज कृष्ण के लिए करेंगे, हर चीज ऐसी है, हर चीज वैसी है, हमने पानी छोड़ दिया, हमने जल छोड़ दिया, हमने परिवार छोड़ दिया, हमने ग्रस्त छोड़ दिया, हमने बेड छोड़ दिया, हमने जमीन छोड़ दिया, हमने सिटाई छोड़ दी, हमने फल छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, जवान छोड़ दिया। अरे छोड़ा क्या, तुम्हारा था ही क्या? प्रभुपाद बोल रहे हैं वैराग का मतलब है ये समझना कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ किसका है? भगवान का। तो फिर अपने आप जीवन में वैराग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और बस अभ्यास करते रहना, जप करते रहना भगवान के नामों का, शास्त्र पढ़ते रहना, रोज गीता का एक श्लोक पढ़े। कितने लोग पढ़ रहे हैं गीता का एक श्लोक रोज? देखिए कितने कम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो रह जाएंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं फिर वो अगली बार आएंगे, वो भी नहीं आएंगे क्लास में। तो गीता नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा इस जीवन का क्या महत्व है, वेस्ट ऑफ टाइम, श्रम एव ही केवलम। जो भी कार्य करें गीता नहीं पढ़े तो बहुत टेंशन है। बचपन में पढ़ाया जाता है अ डॉक्टर एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, अगर आप दिन में एक सेब खाते हैं तो आपके जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी। पढ़ते हैं कि नहीं? ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन की भी ऐसे ही बचपन में पढ़ाया जाता है क्या? अ श्लोक अ डे कीप्स यमदूत अवे, अगर रोज एक श्लोक पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कभी यमदूत नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप नहीं पढ़ेंगे, आप चाहते हैं कि यमदूत ना आए, आपका जीवन कृष्णमय रहे, आपको भक्ति प्राप्त हो, तो एक श्लोक पढ़ने में 3 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? वो भी तात्पर्य लंबा हो तब 3 मिनट। सोचिए जिस कृष्ण ने 24 घंटे दिए उसके लिए आपके पास 3 मिनट नहीं है। फिर आप कहते हैं कि हम तो सत्संग में जाते हैं, क्या सीखा आपने सत्संग से? तो अगली बार पढ़ेंगे सब लोग? पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करिए, कितने लोग भगवद गीता पढ़ेंगे अगली बार? एक श्लोक रोज हरि वो आप नहीं पढ़ेंगे, त्याग दिया आपने, वैराग आ गया। और कोई प्रश्न है माता जी, इसका कोई प्रश्न? श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय।